ओम शांति। पवित्रता के सागर ने हम सभी को आकर अपना शुभ संदेश दिया, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। याद दिलाया, तुम सब जब इस धरा पर आए तो संपूर्ण पवित्र थे, जब तुम मुक्ति धाम में थे तो भी संपूर्ण पवित्र थे। तुम इस सृष्टि की हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट आत्माएं हो। सारे कल्प में ही तुम रिचेस्ट रहे हो, भक्ति में भी तुम्हारी पूजा हुई है, तुम्हारे पवित्र स्वरूप पूजनीय स्वरूप रहे हैं। हमें याद दिलाया तुम्हारी पवित्रता बहुत बहुत महत्व की है, तुम्हारी पवित्रता से ये संसार पवित्र बन जाता है। जब तुम पवित्र बनते हो तो ये प्रकृति पवित्र बन जाती है। जब तुम बाबा के बच्चे, देवी देवता कुल की अनेक आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाते हो तो ये अपवित्र दुनिया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आओ आज हम अपने को देखें, अपने से संकल्प करें, बाबा को वचन दें संपूर्ण पवित्रता का, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता से ही संपूर्णता सह जाएगी। हमें संपूर्ण बनना है, उसमें संपूर्ण पवित्रता मुख्य आधार है। सबसे पहली चीज, हम इस पवित्रता के महत्व को समझ लें। किसी भी चीज का महत्व संपूर्णतया जब हमारी समझ में आ जाता है तो उस पर हम लगन से काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संसार में तो लोग देखते हैं चारों ओर विकारों का साम्राज्य है। लोग सोचते हैं कि भला ऐसे माहौल में पवित्र कैसे बना जा सकता है। इसलिए पहले से ही अनेक मनुष्यों ने इस माया से हार मान ली है, परंतु हम सभी को बाबा ने शक्तियां प्रदान की, दृष्टि दी और पवित्रता का वरदान दे दिया। जैसे ही हमें याद आया कि हम आदि काल में पवित्र देवता थे, हमारे अंदर जो पवित्रता के बीज पड़े हुए थे, जो सुसुप्त अवस्था में स्थित हो गए थे, वो जागृत होने लगे और पवित्रता हमारे लिए सहज हो गई। लोग भी सोचते हैं, सन्यासी भी सोचते थे और अब भी कई सोचते हैं कि हम जंगल में रहकर भी पवित्र नहीं रह पाते, या बहुत कठिन लगता है पवित्र रहना, ये गृहस्थ में रहते हुए, ये भाई बहने इकट्ठे रहते हुए भला पवित्र कैसे रहते होंगे। उनका ये सोचना ठीक भी है, क्योंकि उनके पास पवित्रता का यथार्थ मार्ग नहीं है। वो हठपूर्वक प्रतिज्ञावश स्वयं को ब्रह्मचर्य में रखना चाहते हैं, जो कि आज के माहौल में बहुत कठिन होता है, क्योंकि भोजन है पवित्र, वातावरण है पवित्र, जिन माता पिता से जन्म मिला वो है पवित्र, शरीर में संपूर्ण है पवित्रता। तो ये अपवित्रता के जो बीज हैं, हार्मोन्स हैं, ये मनुष्य को पवित्र नहीं रहने देते। लेकिन उन्हें क्या पता कि हमें तो पवित्रता का वरदान स्वयं पवित्रता के सागर ने दिया है। जो स्वयं पतित पावन है, उसने हम सभी को आकर पावन बनाया है, अपनी दृष्टि दी, अपनी शक्तियां दी और स्मृतियां दिलाकर हमारे अंदर पवित्रता का बीज बहुत शक्तिशाली रूप से बो दिया है। उसने हम सभी को याद दिलाया, अब तुम्हें इस सारे संसार को पुनः देव युग में बदलना है, संसार को ही पावन बनाना है। तुम्हारे चारों ओर जो प्रकृति है, तुम्हारे चारों ओर जो वातावरण है, तुम्हें इसको भी शुद्ध करना है। ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस तुम्हें चारों ओर फैलाने हैं कि वातावरण शुद्ध हो जाए और शुद्ध वातावरण में इस संसार की अनेक आत्माएं पवित्र बनने की प्रेरणा ले सकें। एक समय आएगा जब इन विकारों से सभी को वैराग्य होगा, चारों ओर जब विनाश का नजारा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, जब सामने अनेक लोग मृत अवस्था में पड़े होंगे, जब सब कुछ नष्ट होने लगेगा, तो मनुष्य के अंदर विकारों से विरक्ति हो जाएगी और तब वे सभी पवित्र बनने का संकल्प करेंगे, मानेंगे, स्वीकार करेंगे, निश्चय करेंगे कि उन्हें पवित्र बनना है। और ये सब होगा हमारे पवित्र वातावरण से। हम वाइब्रेशंस फैलाएं संसार का वातावरण, जिसमें स्थूल रूप से भी पोल्यूशन है, लेकिन ये अपवित्रता का पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है, ये शुद्ध हो जाएगा। और दूसरी बात, पवित्रता ही वास्तव में इस प्रकृति की मूल शक्ति है, आंतरिक शक्ति है। वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या आजकल के पर्यावरणविद इस बात को नहीं जानते कि जो प्रदूषण प्रकृति में बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण मनुष्य की अपवित्रता है, उसके अशुद्ध विचार हैं। ये बाह्य प्रदूषण, धुआं निकलना, गैसेज का निकलना, बीड़ी सिगरेट का धुआं और बहुत सारी चीजें जिनका वर्णन किया जाता है, पेड़ काट डाले, ये सब तो अपवित्रता का बाह्य स्वरूप है। हम सब अपनी पवित्रता के बल से इस प्रकृति को पुनः शक्ति प्रदान करते हैं, धरती को उपजाऊ बनाते हैं, प्रकृति को सत्वप्रधान करते हैं। तो हमारी पवित्रता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम अपने लिए भी पवित्र बनते हैं, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए। हम मुक्ति धाम में जाने के लिए भी पवित्र बनते हैं और स्वर्ग का राजभाग पाने के लिए भी पवित्र बनते हैं। तो हम इसके महत्व को समझ लें। हम चर्चा कर रहे हैं पवित्रता के महत्व की। मैं आपके सामने दो चार बातें और रख दूं। प्योरिटी ही रियलिटी है, सत्यता है। प्योरिटी ही रॉयल्टी है। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। किसी को अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो वो प्योरिटी से अपने जीवन का श्रृंगार करे। प्योरिटी सुख शांति की जननी है। किसी को अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो वो पवित्रता को स्वीकार करे, उसको जीवन में अपनाए। बिना पवित्रता के सुख शांति नहीं आ सकती। पवित्रता माँ की तरह है और सुख शांति उसके बच्चे। बच्चे माँ की गोद में भागे चले आते हैं। ऐसे ही पवित्रता ही वास्तव में सेवा का भी सबसे बड़ा साधन है, ये सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। बाबा ने कभी कहा है कि जो सेवा का कार्य आप आज तन मन धन समय ये सब एनर्जी लगाकर कर रहे हो, जब तुम्हारी प्योरिटी संपूर्ण हो जाएगी तो प्योरिटी ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी होगी। पब्लिसिटी का साधन होगा, तुम्हें ये एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। तुम्हारे बोल, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम करने लगेंगे। इतना महत्व है हमारी प्योरिटी का। हम देख सकते हैं जहां भी प्योरिटी का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, वहां की सेवाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, और जहां ये फाउंडेशन थोड़ा भी कमजोर है वहां विघ्न ज्यादा पड़ रहे हैं, टकराव ज्यादा हो रहे हैं, मैपन ज्यादा हो रहा है, मान शान की कामनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि पवित्रता में स्वयं में ही अपना इतना बड़ा सुख और आनंद है कि इस आनंद को चखने वाली आत्मा मान सम्मान और संसार के साधनों के पीछे नहीं भागती, स्वयं में वो तृप्त हो जाती है। बहुत सुखद फीलिंग है ये। बहुतों को ये फीलिंग हो रही है, हो रही होगी। इस फीलिंग की ओर हमें आगे बढ़ना है। ये सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है जीवन की। और आगे बढ़े, बाबा बहुत पहले एक छोटा सा शब्द यूज करते थे, वॉइसलेस और वायरलेस। वॉइसलेस शब्द बहुत सुंदर है पवित्रता के लिए। अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। विकारों के जो पांच स्वरूप हैं और उनके भी जो और छोटे स्वरूप हैं, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष हो, बदले की भावना हो, रोब हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो हैं, चाहे मैंपन हो, चाहे अशुभ भावनाएं हो, इनसे भी जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो वो संपूर्ण निर्विकारी कहलाती है। तो बाबा कहते हैं कि जो निर्विकारी हैं उनका संबंध शिव बाबा से वैसे ही हो जाता है जैसे वायरलेस का संबंध होता है, जिसमें तार नहीं होता लेकिन सीधी बातें हो जाती हैं। आजकल तो मोबाइल भी वायरलेस ही है, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं थे तो वायरलेस का बाबा ने उदाहरण दिया। शब्द भी दोनों समान है, वॉइसलेस और वायरलेस। तो जो लोग कहते हैं हम तो बाबा से बात करते हैं परंतु बाबा तो रेस्पॉन्स नहीं देता, या उन्हें लगता है वन साइडेड रुझान होती है, उसका कारण वॉइसलेसनेस की कमी है, प्योरिटी की कमी है। जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र हैं, जो बहुत पवित्र हैं, वास्तव में उनके दिल में तो बाबा के प्रति बहुत प्यार भर जाता है। प्योरिटी प्यार का भी एक बहुत सुंदर आधार है। पवित्र आत्माओं को भगवान भी बहुत प्यार करता है, चाहे वो और चीजों में ढीले ढाले भी हों, लेकिन पवित्र आत्माएं उसके दिल में निवास करते हैं और पवित्र आत्माओं के दिल में स्वयं पवित्रता के सागर निवास करते हैं। पवित्रता का इतना बड़ा महत्व है, हम पवित्रता की शक्ति को धारण करके अपने जीवन को संपूर्ण निर्विघ्न बना सकते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी नहीं, सत्यता का बल हमारे अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी रियलिटी है। रियल हमारा जो स्वरूप है वो यही है। पवित्रता मनुष्य को निर्भय बना देती है, उसमें साहस का संचार कर देती है, उसकी हिम्मत को बढ़ा देती है। बहुत अधिक शक्ति इसमें है। प्राचीन काल से ही लोग कहते थे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो निरोग रहकर 100 साल तक जिएंगे। ये सत्य है, ये शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। स्वास्थ्य के लिए भी हम अपनी शक्ति को कदापि नष्ट न होने दें। हम चलें संपूर्ण पवित्रता की ओर, लक्ष्य बना लें, मुझे संपूर्ण पावन बनना है। अपने से बात करें, एक बार भगवान को वचन दे दिया, वचन वापिस नहीं लेना है। हम जानते हैं पवित्रता की ये यात्रा बड़ी यात्रा है, एक दिन में कोई पवित्र नहीं बन सकता। इसमें मनुष्य को गहन तपस्या भी करनी पड़ती है। इसी के महत्व को स्पष्ट समझने के लिए मैं एक और गुह्य बात आपके सामने रखता हूँ। एक बार किसी महान आत्मा ने बाबा से पूछा, भगवान से पूछा कि बाबा, बहुत सारे महारथी हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करने वाले प्रसिद्ध महारथी यज्ञ में हैं, आखिर आटकी माला में कौन आएगा? बाबा ने तुरंत उत्तर दिया कि आटकी माला का संबंध महारथी होने से, सर्विसेबल होने से, नामी ग्रामी होने से नहीं, जो आत्माएं संपूर्ण पावन बन जाएंगे वो अष्टरतन होंगे। बहुत सुंदर उत्तर था। 69 की बात है, मैंने भी अपने कानों से सुना था, बहुत गहरी बात है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात एक बिल्कुल निर्मल बच्चे की जैसी स्थिति, जो निर्मल है, जो निश्चल है, जो निष्कपट है, जिसके चित्त में निगेटिविटी, ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, बिल्कुल निर्मलता, ये संपूर्ण प्योरिटी है। तो आओ हम सभी संपूर्णता की इस मंजिल पर चढ़ने के लिए संपूर्ण पवित्रता से अपना श्रृंगार करें। केवल अश्रुतन ही संपूर्ण पवित्र बनेंगे ये जानकर हम अपनी पवित्रता को ढीला न कर दें। पवित्रता का सुख बहुत बड़ा सुख है। अश्रुतनों के बाद 100 विजय रतन, उनकी प्योरिटी भी तो 90% के आसपास होगी, 80% से ज्यादा होगी, वो सुख भी बहुत बड़ा है। और भी बहुत महान आत्माएं हैं जो पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति तक पहुंचेंगे, 70%, 75%। हमें जानना चाहिए जो जितने अच्छे योगी हैं वो उतने ही ज्यादा पवित्र हैं, और जो जितने ज्यादा पवित्र हैं वो उतने ही ज्यादा इस ईश्वरीय कार्य में सूक्ष्म रूप से भगवान के मददगार हैं। तो हम बाबा को भी मदद कर रहे हैं, हम स्वयं को भी राज अधिकारी बना रहे हैं। स्वराज अधिकारी बनकर हम विश्व का राज पा लेते हैं इस पवित्रता के बल से। क्या करें हम? मैं फिर वो बात दोहराऊंगा कि इस यात्रा पर निराश होने की आवश्यकता नहीं। आज हम आगे चलते हैं, कल हमें अपने में कोई कमजोरी दिखाई दे, निराश न हो, बस चेक ये करें कि हम दिनों दिन आगे बढ़ रहे हों। जैसा मैंने कहा, ये यात्रा कोई एक दो साल में पूरी नहीं हो जाती, ये लंबी यात्रा है। इसमें हमारे विक्रम भी हमारे सामने बाधा बनकर आते हैं, और इसमें हमारे शरीर में स्थित सेक्सुअल हार्मोन्स, शरीर में स्थित जो अपवित्रता है वो भी बाधक बनकर आती है। हमारे पूर्व जन्मों के किसी से बहुत गंदे संबंध रहे हों, वो आत्माएं भी हमारे सामने बाधक बनकर आती हैं। इन बाधाओं को पार करते चलना है हमें योग बल से। तो निराशा की आवश्यकता नहीं। स्वप्नों में कोई डिस्टरबेंस हो, नींद में कोई डिस्टरबेंस हो, उसमें भी अपने को निराश और हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं। तुरंत उस चीज को आगे बढ़ाओ, पास्ट को भूल जाओ, आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, उसके प्रभाव को समाप्त करना है। कितना भी गंदा आपका पास्ट बीता हो इस जीवन में, अब ये नया जन्म हो गया। जैसे नए जीवन में पुराने जीवन की बातें भूल जाती हैं, वैसे ही हमारा ये शूद्र से ब्राह्मण नया जन्म हो गया। हम पुरानी बातों को भुला दें, अब हम संपूर्ण पवित्र हैं। जो भी हमने किया वो अज्ञानवश किया, वो पाठ पूरा हो गया। अपने को फिर से शुद्धता के मार्ग पर हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला अभ्यास हम करें, बहुत बहुत बार अशरीरी होने का अभ्यास। मैं आत्मा इस तन में आई हूं, मैं परम पवित्र हूं, पवित्रता मेरा मूल स्वरूप है। चिंतन थोड़ा करेंगे, मैं पवित्र थी और पवित्र बन जाऊंगी, पवित्र होकर ही मुझे वापस जाना है। बाबा मेरे लिए पवित्रता की सौगात और वरदान लेकर आया है। जहाँ भगवान का साथ है वहाँ पवित्रता तो मेरा श्रृंगार करेगी ही। इस चिंतन के द्वारा बार बार स्वयं को देह से न्यारा करें, तो देह के जो विकार हैं, देह में भी विकार हैं, वो आत्मा को छुएंगे नहीं। आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक बनती जाएगी। संकल्प देते चलें, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मुझसे निकले हुए पवित्र वाइब्रेशंस सारे शरीर में फैल रहे हैं। जैसे शरीर एक गुब्बारा है और मुझ आत्मा चमकती हुई ज्योति से निकलते हुए सफेद पवित्र वाइब्रेशंस इस सारे शरीर में भर गए हैं, शरीर के अंदर की इम्प्योरिटी को नष्ट कर रहे हैं, सभी सेक्सुअल फीलिंग्स को भस्म कर रहे हैं। ये पवित्रता फिर मुझसे बाहर फैल रही है, ये किरणें बाहर की ओर जा रही हैं, वातावरण को शुद्ध कर रही हैं, प्रकृति इन किरणों को ग्रहण कर रही है। बहुत अभ्यास ये करेंगे, साथ ही साथ इससे जोड़ देंगे दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस, क्योंकि देह देखने की प्रैक्टिस 2500 साल की है। देह का आकर्षण हजारों साल से हमसे जुड़ गया है। देह से प्यार, देह का चिंतन, देह का वर्णन, उसके बारे में पढ़ना, इन सब बातों को छोड़ देना पड़ेगा। संकल्प करें, जब हमने राह बदल दी तो फिर अब इस पुरानी राह की ओर देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सोचना नहीं है। संकल्प करें, ये अब मेरी राह नहीं है, मेरी राह तो पवित्रता की राह है। बहुत आनंद आएगा, बल मिलेगा। अपनी प्रतिज्ञा को रोज एक बार दोहराएं। सवेरे भगवान को वचन दे दिया है, वापिस नहीं लेना है। मृत्यु प्रिय वचन से टलना असंभव होगा ही नहीं। ये प्रतिज्ञा बहुत बल देगी, बाबा की दृष्टि हमारी ओर आया करेगी, उसकी शक्ति हम में बढ़ती जाएगी और पवित्रता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां समाप्त होती रहेंगी। तो आत्मा जैसे जैसे हम देखेंगे वैसे वैसे ये देह का आकर्षण, इसकी ओर झुकाव लगाव स्वतः ही ढीला पड़ता जाएगा। हमें देह के आकर्षण को काटने के लिए और कुछ नहीं करना होता, केवल सबकी भ्रकुटी में चमकती हुई मणि देखनी है। तो जो बहुत अच्छी साधना करना चाहते हैं वो अपनी दिनचर्या में ऐसे 5 टाइमिंग्स फिक्स करें जब आप सबको आत्मा देखेंगे। जो भी दिखाई दे सब आत्माएं हैं। जिससे आपका बहुत प्यार हो उन्हें भी आत्मा देखें, जिसके प्रति आपका विशेष आकर्षण हो उसे भी आत्मा देखें, बच्चों को भी, पत्नी को भी, माँ बाप को भी, फ्रेंड्स को भी, सबको आत्मा देखें। साथ में जोड़ दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझसे निकले हुए पवित्र वाइब्रेशंस इन आत्माओं को जा रहे हैं। संकल्प करें मुझे सभी को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। तो दूसरों के अपवित्र वाइब्रेशंस हमें टच नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर ये अभ्यास है। ये दोनों प्रैक्टिस, शरीरी होना और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बनाना, हमारी इस साधना में, पवित्रता की साधना में बहुत मददगार हैं, बहुत ज्यादा मदद करेंगी हमें। हम जानते हैं, अब अगली बात पर आ जाएं, हम सब जानते हैं कि स्वयं योगेश्वर ने आकर हमें राजयोग सिखाया है और राजयोग सिखाया ही है पवित्र बनने के लिए। हमें पावन बनना है तो हम हठपूर्वक पावन नहीं बनेंगे, हम तो योग बल से पावन बनेंगे। हमें अपने योग बल को बहुत बढ़ाना है, बस पवित्र वाइब्रेशंस ऊपर से आते रहें, आत्मा ग्रहण करती रहे, ऊपर से पवित्र वाइब्रेशंस आते रहें, आत्मा ग्रहण करती रहे, ऊपर से शक्तियां आती रहें, आत्मा शक्तिशाली बनती चले। ये दोनों अभ्यास हमारी पवित्रता में 4 चांद लगाएंगे। चांद की बात आ गई तो आपको कह दूं कि संपूर्ण पवित्र आत्माएं थोड़े ही समय में इस संसार में वैसे ही चमकेंगी जैसे संपूर्ण चंद्रमा चमकता है, पूर्णिमा का चांद, जिसकी ओर सभी का ध्यान बरबस खींच जाता है, जिसे ये कहने की जरूरत नहीं होती मैं चांदनी बिखेर रहा हूं मेरी ओर निहारो। हर मनुष्य लालायित होता है, छत पर लोग जा बैठते हैं चांद की अद्भुत छटा को निहारने के लिए। यही उन महात्माओं के साथ होगा जो संपूर्ण पवित्र बनेगी। तो हम साधनाएं करें, अपने खान पान को शुद्ध करें, अपने संग को सुधारें, अपने आहार विहार को बिल्कुल सात्विक कर दें, एकांत लें, सुंदर वातावरण में रहें, उन लोगों का संग छोड़ दें जो अपवित्रता की बातें करते हैं। भोजन का बड़ा महत्व है, भोजन योगयुक्त बनाएं, योगयुक्त होकर खाएं। लहसुन प्याज का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि लहसुन प्याज सेक्सुअल फीलिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं काम की भावनाओं को, इसलिए परमात्म आज्ञा मिल गई लहसुन प्याज छोड़ दो। डॉक्टर क्या कहते हैं, संबंधी क्या कहते हैं, इस बात पर विचार नहीं करना होता है, भगवान क्या कहते हैं। तो भोजन को सात्विक करें। जो लोग स्वयं भोजन बनाते हैं वो ध्यान दें कि भोजन के 1 घंटे के समय को तपस्या का समय बना लें, बिल्कुल समझें हमें योग करना है, भोजन बनाना एक काम नहीं है, वो एक बहुत अच्छी हमारी योग की तपस्या का समय है। योग युक्त होकर भोजन बनाएं, जैसे कि बाबा की किरणें भोजन पर निरंतर पड़ रही हैं, तो तमो प्रधान प्रकृति से आया हुआ भोजन शुद्ध हो जाएगा, वो हमें बहुत अधिक सात्विक बनाएगा बाबा कहते हैं यदि तुम योगयुक्त होकर भोजन खाओ 50% प्योरिफिकेशन तो आत्मा का भोजन से हो जाएगा, 50% तुम पावन बन जाओगे भोजन से, बाकी 50% के लिए तुम्हें योग अभ्यास करना होगा। तो आओ हम सभी अपने कमजोर विचारों को तिलांजलि देकर, इन कमजोरियों को भी छोड़कर कि हमारा साथी हमें मदद नहीं करता, लोग पवित्रता में बंधन डाल रहे हैं, इन सब को छोड़ दें। जिसे पवित्र बनना है उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपको पवित्र बनने के लिए कष्ट भी सहना पड़े, सुनना पड़े, सब कुछ छोड़ देना पड़े, छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है वो अल्पकालीन है, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व हमारे लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए नहीं है। हम दृढ़ता पूर्वक सभी बाधाओं को पार करते हुए अपनी संपूर्ण पवित्रता की मंजिल पर आगे बढ़ते चलें। जो भी कमजोरियां इसमें आती हैं उनसे, कमजोरियां या बाधाएं आती हैं उनसे घबराएं नहीं, उनसे रुके नहीं। कई कुमार ये भी सोच लेते हैं कि सपनों में डिस्टरबेंस हो रहा है, ये कोई पवित्रता है क्या, इससे तो इसे छोड़ ही दिया जाए, ये तो बहुत कमजोर संकल्प है, ये तो कमजोर आत्माओं के विचार हैं। शक्तिशाली बनो, बाधाएं तो आती हैं, जो मनुष्य बाधाओं को हिम्मत से पार कर लेता है वो बहुत शक्तिशाली बनता है। और जिसे राज संभालने हो, सत्ययुग त्रेता के राज, द्वापर में भी जिसे राज संभालने हो, उन्हें शक्तिशाली होना ही चाहिए, नितांत शक्तिशाली। यदि वो कमजोर होंगे तो राज करने की सत्ता शक्ति उनके अंदर नहीं आएगी। जो पहले छोटी छोटी चीजों से घबरा रहे हैं वो भला क्या राज करेंगे, जो छोटी छोटी माया से घबरा गए, जो साथियों से घबरा गए, जो साथियों के अधीन हो गए, उन्हें तो माया परास्त करेगी ही। इसलिए हमें बहुत ही साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। और आगे हम चलें, हमें अपनी कर्मेंद्रियों को जीतना है। लोग तो कर्मेंद्रियों को जीतने के लिए बाह्य साधनों का प्रयोग करते हैं, हठपूर्वक कर्मेंद्रियों पर राज करना चाहते हैं, परंतु हमारा लक्ष्य यह नहीं है। हमारी पवित्रता हठपूर्वक करने वाली पवित्रता नहीं है, हमारी पवित्रता तो नेचुरल जीवन को आनंदित करने वाली है। क्या हो सकता है ये मुनियों को, संतों को इस योग का ज्ञान नहीं है? यद्यपि शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं, लेकिन लोगों का ध्यान आजकल उन गुह्य रहस्यों की ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी का लेवल, साधनाओं का लेवल, पवित्रता का लेवल काफी नीचे उतर गया है। हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। सबसे पहले जीतेंगे अपनी जीभ को, जीभ के रस को। भोजन केवल शारीरिक तृप्ति के लिए है, जीभ की तृप्ति के लिए नहीं। आंखें सुंदरता देखने के लिए लालायित रहती हैं। सबसे अधिक सुंदरता तो हमारे मूल स्वरूप में है। यदि सुंदरता देखनी है तो सतयुग की सुंदरता को देखें, अपने देव स्वरूप की सुंदरता को देखा करें। कान व्यर्थ सुनने के लिए ज्यादा लालायित रहते हैं। यदि हमें सुनना ही है तो परमात्म महावाक्य सुने, उनका रस लें, उनका आनंद लें। यदि हमें कुछ बोलना है तो हमारे मुख से अमृत धारा निकले। ये करते करते हम कर्मेंद्रियों के विजयी बन जाएंगे। हम कर्मेंद्रियों के मालिक हैं। इस बात को हम प्रैक्टिस में लाएं, अपने अनादि स्वरूप को ध्यान में लाएं, आदि स्वरूप पर दृष्टि डालें, अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करें। वर्तमान हमारा ब्राह्मण जन्म परमात्म छत्र छाया में पल रहा है, इसको याद करें। और अंत में हमें फरिश्ते बनना है, संपूर्ण पवित्र, ये हमारे पांच स्वरूप हमें पवित्रता की स्मृति दिलाते हैं। इन सब का बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से पवित्रता की यात्रा बड़ी सहज और बड़ी सुखदायी हो जाएगी। आओ हम सभी इस यात्रा पर आनंद पूर्वक चलें और अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर लें। ओम शांति।